कभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हमारे सामने जो पुस्तक है वो डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने लिखा हुआ है, परंतु जो क्रमबद्ध पर्याय का जो विषय है वो सारे ही जिनागम में अलग अलग ग्रंथों में पाया जाता है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय ये तो वस्तु की व्यवस्था है और जिनागम तो वस्तु की व्यवस्था को ही बताने वाला है। जब हम क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करते हैं तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो या सर्वज्ञता का निर्णय कहो, एक ही बात है, क्योंकि सर्वज्ञता का निर्णय उसमें क्रमबद्ध पर्याय का भी निर्णय गर्भित हो जाता है। हमें क्रमबद्ध पर्याय इस विषय को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, परंतु क्रमबद्ध पर्याय का जिस समय निर्णय हो जाता है, जिस समय सर्वज्ञता का निर्णय हो जाता है, उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ये क्रमबद्ध पर्याय, ये जो विषय है उसको सीखना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्रमबद्ध पर्याय ये द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। हाँ भाई, ये हम जरा सोचेंगे ना उसके ऊपर, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, आपका क्या उसमें कुछ आप सोच सकते हो? भले गलत होगा तो हम उसको सुधरेंगे। हाँ, पर्याय होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप पर्याय, क्योंकि नाम में ही पर्याय लिखा है ना, आपका क्या कहना है? पर्याय ही है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय यह पर्याय का नाम है ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय यह द्रव्य की जो वस्तु व्यवस्था है, सारे विश्व की छहों द्रव्यों की जो वस्तु की व्यवस्था है कि द्रव्य में गुण और पर्याय है, और अनादि अनंत पर्यायों सुनिश्चित क्रम से अपने अपने स्वयं के उपादान से उसी क्रम में और वही पर्याय और उसी क्रम से निर्माण होगी, ऐसी व्यवस्था द्रव्य के अंदर ही विद्यमान है। तो ये छहों ही द्रव्यों की जो वस्तु व्यवस्था है, द्रव्य की जो स्वतंत्र सुनिश्चित वस्तु व्यवस्था, अकेली वस्तु व्यवस्था भी नहीं, सुनिश्चित है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय यह पर्याय का नाम नहीं है, परंतु यह वस्तु की व्यवस्था है। द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है, द्रव्य में ही ऐसा गुण है कि अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न करे। ये तो हमें मालूम है कि द्रव्य में ही अपनी शक्ति से, अपनी उपादान की योग्यता से उसकी एक एक वर्तमान अवस्था होती है। अब जो ये अवस्था होती है वो किसके कारण होती है? तब हमारी अनादि से ऐसी बुद्धि है कि निमित्तों के कारण से कोई पलटा देवे तो ये अवस्था बदलती है। परंतु हमने अभी तो, आपने तो सारे द्रव्य गुण पर्याय अभी हम यहाँ सीखे हैं लघु सिद्धांत परिचिका में, तो ऐसा कोई धर्म है प्रत्येक वस्तु में कि जिसके कारण वो अपनी अपनी पर्याय करे, अपनी अपनी अवस्था हर अपनी अपनी अवस्था करे, यानी अपना अपना कार्य करे, ऐसा कोई गुण वस्तु में है क्या? और उसका नाम क्या होगा? हाँ, वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या बताता है? कि द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, प्रयोजनभूत उसको नाम दिया, तो अपना अपना कार्य करता है, यानी उत्पाद और व्यय होने की शक्ति हर एक द्रव्य में है। अब ये द्रव्य कार्य करता है तो कब करता है? जब मन चाहे तब करता है, तो एक दो घंटे के बाद करता है तो थोड़ा सोता है और बाद में करता है, तो निरंतर करता है। तो निरंतर करने वाला कौन सा गुण है? अभी पहले तो वस्तुत्व देखा हमने, कार्य कर रहा है वो तो वस्तुत्व गुण का कार्य, और वो निरंतर हो रहा है वो, हाँ, अब द्रव्यत्व गुण का कार्य। ये सारे हम सीखे सामान्य गुण, तो ये निरंतर चलता रहे द्रव्यत्व गुण, अभी निरंतर चलता रहे यहाँ तो हमने मान लिया, परंतु उसी समय में वही कार्य हो, अन्य कार्य न हो सके, ऐसा भी गुण, ऐसे भी शक्ति, ऐसे भी व्यवस्था उस द्रव्य में ही विद्यमान है, हर एक अपने अपने द्रव्य में। उस वस्तु व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय से नाम है। क्रमबद्ध ने विशिष्ट क्रम से, उसका जो क्रम है वो निश्चित है, किसी ने बनाया नहीं है, वस्तु के ही अंदर ऐसी ही सहज व्यवस्था है कि उसके हर एक समय की पर्याय, अनादि से अनंत काल की हर एक पर्याय वही होगी और उसी समय होगी, एक समय भी पीछे आगे नहीं होगी, और जो होने वाली है वही होगी। तभी जो हमने मंगलाचरण देखा अभी, ये तो फिर उसमें दोबारा चर्चा करेंगे, अभी थोड़े में देखेंगे। ये कार्तिकेय अनुपेक्षा नाम का जो सबसे हमें पुरातन ग्रंथ अवेलेबल है, उसमें स्वामी कार्तिकेय नाम के आचार्य हो गए, उन्होंने उसमें मेरे ख्याल से उनके कार्तिकेय अनुपेक्षा ने, कार्तिकेय स्वामी ने जो अनुप्रेक्षा ने जो 12 भावनाएं लिखी है, एक एक भावना के ऊपर बहुत सारे श्लोक है, और सबसे बड़ी भावना उनकी वो लोक भावना है, लोक का सारा स्वरूप, तो उसमें ये सारी बातें आती है कि उन्होंने लिखा है जम जस जम निदे से, जम यानी जो अभी कुछ होने वाला है या कुछ जो घटना है या कोई पर्याय है, जम जस यानी जिसकी, जस यानी जिसकी, जमनी यानी जिस देश यानी देश में, यानी उसका स्थान निश्चित हो गया, क्षेत्र निश्चित हो गया ना, जम जस जस यानी द्रव्य निश्चित है, जमनी देश यानी वो क्षेत्र निश्चित हुआ, ये बाह्य क्षेत्र की अपेक्षा है, जेण विहाने न जिस विधि से, यानी उसका सारा पर्यायों का क्रम भी जिस विधि, विधि में तो एक एक दो पर्याय नहीं, सारी एक के पश्चात आने वाले सारी पर्याय, उस पूरा पर्याय उनका सिलसिला होता है उसमें, जम्मी कालम्मी जिस काल में अनादम जिनेन नियदम यानी ज्ञातम, अनादम यानी ज्ञातम, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा जाना है, नियदम जम्मम वा अहोमरणम वा, जो नियत है यानी जो निश्चित है सुनिश्चित है, जम्मम यानी जन्म वा अहोमरणम वा अथवा मरण, अकेले जन्म और मरण लिख दिया, परंतु उसमें सारी जन्म से मरण तक की सारी ही घटनाएं ले लेना, वो सारी सुनिश्चित है, जिनेन्द्र भगवान ने जाना इसलिए सुनिश्चित है, ऐसा क्यों? जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान का ही ऐसा स्वरूप है, वो स्वयं अपने से जान रहा है, और वस्तु में ऐसी व्यवस्था है कि वो स्वयं अपने से वो सारी पर्याय हो रही है, परंतु यहाँ जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में जैसे आया है, तो सर्वज्ञ ने ये सारी पहले से ही जान ली है, भूत भविष्य वर्तमान की सारी ही अनादि अनंत पर्याय उनके ज्ञान में एक समय में आ गए, सर्वज्ञ का स्वरूप तो हमने निश्चित किया है पहले, जैसे उन्होंने जाना है तम यानी वो जो पर्याय है या वो घटना है वो जो जो कुछ बनने वाली है, तम तत्स तम निदेशे तेन विहानेन यानी वह तस्य यानी उसी द्रव्य की खुला है, ठीक है, उसी विधान से, वो विधान में तो सारा निमित्त वगैरह सब आ गए, पुरुषार्थ भी वही उसी विधान से में तो सारे, ये तो अगर हम चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में, उसी विधान से यानी उसी विधि से हो गए, तो विधि में तो सारी बात है, उसका उसमें पुरुषार्थ भी आएगा, उसमें उसके निमित्त भी आएंगे, वो सारी बातें उसमें आ जाएगी, तम्य कालम में उसी काल में होती है, को सप्तरी वारे दूं उसको, वारे दूं उसके निवारण करने के लिए, उसको हटाने के लिए कौन समर्थ है, यानी उसका निवारण करने के लिए हटाने के लिए, हाँ, कोई नहीं हटा भी सकता उसको, इंदो वा तह जिनेन्द्र वा, इंद्र भी उसको हटा नहीं सकता, बदला नहीं सकता, या जिनेन्द्र स्वयं जो जान रहे हैं वे भी स्वयं बदल नहीं सकते, जान तो सकते हैं, उसमें बदलने के लिए इंद्र नरेंद्र जो कोई ये राजा हो इंद्र हो डॉक्टर हो कोई भी उसको एक समय में भी उसको पलटाने के लिए या आगे पीछे करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। एवं जो इच्छा दो जान दी दौवाणी सव पध्याये, इस प्रकार से जो निश्चय देने निश्चय से ऐसा अर्थ नहीं करना, जो ऐसा सुनिश्चित जानता है निश्चय से जानता और व्यवहार से नहीं जानता ये बात यहाँ नहीं है। जो ऐसा सुनिश्चित जानता है ठाम जैसे 100% खात्री से जो जानता है दौवाणी सव पध्याये, ऐसे सभी द्रव्यों की सभी पर्याये, जिस ये ऊपर जो बातें हैं ना, जिस द्रव्य की जिस देश में जिस काल में जिस विधि से जैसी होनी है वो जो जिनेन्द्र भगवान ने जानी है वे उसी प्रकार उस सब में वो लगाना होगी, यानी वो किसकी सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, सभी पर्याय ने भविष्य की भी, क्योंकि कोई कोई मानता है कि भूतकाल की तो जिनेन्द्र भगवान ने देखी हम मानते हैं, परंतु भविष्य की मानते हैं कि नहीं मानते उस पर वो शंका लेकर, इन्हें वो सर्वज्ञ का स्वरूप भी नहीं जानते, क्योंकि ऐसा है ना भविष्य की जानते तो हमारा करना धरना कहाँ रहा, ऐसी पराधीनता लगती है। ये सारी बातें इसमें हम चर्चा करेंगे कि पुरुषार्थ कहाँ रहा, पराधीनता आती है या नहीं आती है, ये पांच लगती पांच समय, ये सारी बातें इसमें हम क्रम क्रम से सारी देखेंगे, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ये सारी बातें आती है। तो जो ये निश्चित ऐसे जानता है कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय जिस देश में जिस द्रव्य की जिस विधान से जिस काल में ये सारा उसमें लगा होती है वैसे ही होगी, तो सद्दिग्धि शुद्धो, वह सम्य दृष्टि है। शुद्धो यानी वो तो उसको एकदम बल देने के लिए शुद्धो शब्द डाला, शुद्ध सम्य दृष्टि कहो या सम्य दृष्टि कहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह सम्य दृष्टि है। जो संकदि सोह कुद्दिग्धि, और जिसमें उसमें जरा भी शंका आती है, जरा मैं इतना थोड़ा करूँ तो पलट सकूँ मैं कि ऐसा होने वाला है, परंतु मैं जरा उसको रोक सकता हूँ उसको बदल सकता हूँ, ऐसा जो मानता है यानी जो इसमें शंका करता है, जिनेन्द्र भगवान ने जो देखा है, अभी जिनेन्द्र को बाजू रखिए कि वस्तु में जो जिस समय पर्याय होने वाली है वो उसी विधि से वैसे ही होगी, इसमें जो शंका करता है, इसमें जिसको अभी कुछ करू करू की बुद्धि रहती है, वो करू की बुद्धि भी क्यों रहती है, क्योंकि अभी क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा ज्ञान उसको उसके स्वेच्छा स्वरूप नहीं जाना है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ यह मान्यता भी रहती है और करने के धरने की बुद्धि भी होती रहती है। तो जो शंका करता है वह कुद्दिष्टि यानी मिथ्या दृष्टि। अब हम यह पुस्तक जो प्रथम खंड है कि क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन, वहाँ से शुरू करेंगे, दो पेज पहले 17 पेज पर, अपने पेज नंबर अलग अलग है ना, नहीं ये इसमें जो अलग है गुजराती है ना, ये आप गुजराती, हाँ इसके दो पेज में जो जहाँ से शुरू है ना दो पेज पहले प्रथम खंड क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील ने एक पुस्तक लिखी है क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, उसके पहले उन्होंने अपनी बात भी कही होती जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी भाई ने स्वाध्यायी ने उनको पूछा था कि ये जो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही होना है तो ये पुरुषार्थ कहाँ रहा। तो पहले उन्होंने तो स्वामी जी को सुना नहीं था, न देखा था, न कोई उनके बारे में जाना था, तो आत्मधर्म के उस अंक में क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर जो लेख आए थे दो, तो उसकी फिर चर्चा की, उसके बाद उन्होंने अपनी बात बताई, वो सारे आप पढ़ के वो देखेंगे आप तो जान जाएंगे। हम अभी पुस्तक को शुरू करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन, क्रमबद्ध पर्याय ये विषय, क्रमबद्ध पर्याय जो विषय है आज दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित विषय है, लेकिन जब से स्वामी जी ने इसकी बात उठाई वो उन्होंने अपने मन से तो नहीं उठाई है, क्योंकि समय सार गाथा 320 वगैरह में जो ज्योतिषाचार्य की टीका आती है तो उसमें भी उन्होंने क्रम नियमित आत्म परिणाम ऐसा शब्द डाला। इसमें क्या लिखा है कि जो जो जीव है वो क्रम नियमित आत्म, आत्म ने स्वयं के, क्रम नियमित ऐसे आत्म पर्याय उनसे आत्म परिणामों से परिणामित होता हुआ स्वयं जीव है, अजीव नहीं है। वैसे अजीव भी, अजीव ने उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सारे जो द्रव्य है वे भी क्रम नियमित ऐसे जो अपने अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए अजीव ही है, जीव नहीं। तो वहाँ से ये जो क्रम नियमित शब्द आया कि वस्तु की जो पर्याय वो सुनिश्चित भी है वही होगी और उसी समय की उस समय होगी, पहले नहीं होगी, तो ये बात वहाँ से आई है। और ये स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी अभी हमने देखा। ऐसे तो जिनागम में बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जहाँ से ये क्रमबद्ध पर्याय की बात हमें पता चलती है, तो इसको हम क्रम से देखेंगे। तो जब स्वामी जी ने उसकी चर्चा उठाई तब क्योंकि सर्वज्ञ के बारे में और क्रमबद्ध पर्याय के बारे में जो तत्व का अभ्यासी नहीं था या जो तत्व का अभ्यासी भी थे ऐसे जो पंडित थे उनके बारे में बहुत अलग अलग भ्रांत कल्पनाएं थी, मिथ्या धारणाएं थी। और उस मिथ्या धारणाओं के कारण जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलने लगी तो उसका विरोध भी होने लगा और लोग आपस में उसकी चर्चा भी करने लगी दोनों तरफ से। अब इसको हम देखेंगे यहाँ कि क्रमबद्ध पर्याय आज दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित विषय है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, पक्ष ने जो क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हो या उसका विरोध करने वाले हो। पर इसकी चर्चा आज तत्व प्रेमी समाज में सर्वत्र होती देखी जाती है। देखो अभी हम क्रमबद्ध पर्याय के नाम से अपना समाधान कर लेते हैं। एक किसी पंडित ने कहा था कि अन्य द्वय क्या, अन्य लोग क्या कहते हैं, जैसे भगवान ने देखा है, जैसे भगवान की इच्छा है वैसे होगा। और जैनी क्या कहते हैं, जैसे क्रमबद्ध पर्याय है वैसा होगा। तो उनके मान्यता में कोई भी फर्क नहीं है ऐसा बता। तो उस एक वाक्य पर मैंने इतना बहुत दिन तक विचार किया कि ऐसा क्यों कहते हैं, अरे हम तो क्रमबद्ध तो सर्वज्ञ ने जैसा देखा है वैसा मानते हैं और वे भगवान की इच्छा, हम तो भगवान की इच्छा तो मानते नहीं, जैसा उन्होंने देखा है वैसा मानते हैं। तो उसमें हमारी दृष्टि कहाँ है, किसकी तरफ देखकर हम क्रमबद्ध का निर्णय करते हैं। कोई विशिष्ट घटना घटी, उस घटना की तरफ हम देखकर क्या करते, नहीं नहीं ऐसे बनने वाला, तो यह क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने किसी एक पर्याय, एक वस्तु की एक पर्याय देखी, वहाँ भी वो किस द्रव्य के वो सारा नहीं जाना, ऐसा कुछ गोल में उस सबका मिलकर विशिष्ट घटना की तरफ देखकर क्या कि कोई फेल हुआ या कोई हमें ठोकर लगी, एक्सीडेंट होना हो गया, तो क्या उसकी तरफ देखकर क्या कहते, नहीं जैसा होने वाला था क्रमबद्ध पर्याय में वैसा हुआ, परंतु यह सच्चा निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं क्योंकि वो एक पर्याय की तरफ देखकर आपको पूरे अनादि अनंत पर्यायों का ख्याल आ गया। पर्याय की तरफ देखकर क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय नहीं होता। तो कहाँ देखकर होगा कि वो अनादि अनंत पर्यायों को कौन जानता है, तो सर्वज्ञ जानते हैं। तो हमारा अपना ज्ञान तो अभी सूक्ष्म ज्ञान है, हम तो अनादि अनंत पर्यायों को तो नहीं जानते, परंतु जब सर्वज्ञ का सच्चा निर्णय करते हैं, सर्वज्ञ किसको कहेंगे कि जो सभी द्रव्यों की सभी अनादि अनंत पर्याय एक समय में जानते हैं, तो उन्होंने तो नक्की जान लिया है। तो उन्होंने जान लिया है तो उन्होंने कैसा जाना है, तो उन्होंने ऐसा जाना है कि प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, अपने अपने क्रम से होगी, उसी क्रम से होगी, वही होगी और उसी समय होगी। अब अन्य वस्तु की अपेक्षा जिस देश में जिस स्थान पर होनी है वही होगी, जिस काल में होनी है वही होगी और जिस निमित्त से होनी है वही होगी। क्योंकि हम तो क्या कहते कि ये एक्सीडेंट तो होने वाला था यहाँ, या कोई जीव मरने वाले तो था, एक्सीडेंट से नहीं मरता तो रोग से मरता, तो ये क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय हुआ। इसमें भी देखो अपनी ही जो जो मिथ्या भ्रांति है ना वही अभी निकालना है। क्या माना हमने, मरने वाले तो था यानी मरने वाला था इतना ही मान लिया, एक्सीडेंट से नहीं मरता तो रोग से मरता, उसमें क्या हमने ये निमित्त नहीं होता तो दूसरा होता। हाँ तो जैन विधान विधान ने लिखा है ना कि जिस विधि से मरेगा वो भी निश्चित था, तो हमने उस निमित्त को हटा दिया, नहीं नहीं ये नहीं होता तो दूसरा तो हो जाता, यानी उसको हमने नहीं माना, यानी एक विशिष्ट घटना को माना परंतु उसके सारे जो पांचों ही समवाय भी निश्चित है। अभी वो समवाय क्या है वो सारी बातें आएगी, यानी उसका उस समय का निमित्त भी निश्चित है। वो रस्ते पर नहीं मरता तो हॉस्पिटल मरता, ये बात भी सच्ची नहीं है। ऐसा कथन में हम कहते हैं, इसीलिए कहा कि क्रमबद्ध पर्याय का नाम तो लेते हैं परंतु उसका सही अर्थ जो है वो हमारे अभी ख्याल में नहीं आता है, तो उसके हम चर्चा करेंगे यहाँ। देखो, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, पर इसकी चर्चा आज तत्व प्रेमी समाज में सर्वत्र होती देखी जाती है। यद्यपि पूज्य श्री कांजी स्वामी ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत कर अध्यात्म जगत में एक क्रांति का शंखनाद कर दिया। जिस समय में यहाँ तो कोई बड़े बड़े पंडित थे, परंतु ये कोई इसकी बराबर सही पहचान नहीं थी तत्वों की, ऐसे समय में उन्होंने ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जब कहा, शंखनाद कहा या सिंहनाद भी कहते उसको, तो तब तो बहुत सा विरोध हुआ उनको ये क्रमबद्ध पर्याय के कारण। परंतु वो अडिग रचन की तो शास्त्र की बात बताते थे, अपने मन की कोई नई खोज तो उन्होंने की नहीं थी। वस्तु की जो व्यवस्था है जो आचार्यों ने ही शास्त्रों में लिखी है, दिगम्बर आचार्य ने जो उसका प्रतिपादन किया है, उसको उन्होंने अपनी सहज सादी भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। और यह महत्वपूर्ण विषय समाज में आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तथापि इसकी गहराई में जाने वाले व्यक्ति कम ही नजर आते हैं। ये लिखा ना, गहराई में उसकी उंडाई, उसकी जो सखोल, उसका विचार नहीं करते, ऊपर ऊपर से बता देते नहीं, जैसे होने वाला है वैसा हुआ, वो उसका सच्चा उसका निर्णय है ही है। जैन दर्शन के इस अनुपम अनुसंधान पर जिस गहराई से मंथन किया जाना चाहिए वह दिखाई नहीं देता, कि जो क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय करेगा, सच्चा मंथन करेगा, तो उसको सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा ही नहीं। तो ये क्रमबद्ध पर्याय अभी हम विषय सीख रहे हैं, तो उसमें भी अंतर गहराई से उसके ऊपर हम बार बार विचार करेंगे। यहाँ तो बैठकर हम घंटा डेढ़ घंटा पढ़ेंगे, परंतु ये तो सारा चिंतन का विषय हमारा बनना चाहिए। अकेले पढ़ना या उसकी कुछ परिभाषा याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम इतने ऑब्स्टेकल्स, इतने जब ये मनुष्य भव ही कितना दुर्लभ है, आपको मालूम है पांच परावर्तन आदि सारे, आपको भी ये द्रव्यगुण पर्याय भी सीखे हम, पांच परावर्तन ये बाकी सारी बातें भी देखिए, तो मनुष्य भव की दुर्लभता हमारे ख्याल में आ गई है। और ऐसा जो अद्वितीय मार्ग भी अपने अभी हाथ में आ गया है, अभी यहाँ तक आकर यदि अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो यहाँ से हम लौट जाएंगे, फिर अनंत काल तक कहाँ जाएंगे उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए सारा ही विचारों में मंथन में सतत चलेगा विषय, पुस्तक के आधार से हम बात करेंगे अभी और क्रम से इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो, इस महान दार्शनिक उपलब्धि को, दार्शनिक दर्शन शब्द है ना, ये जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, वैदिक दर्शन, दर्शन है वो जो तत्व ज्ञान है अलग अलग जो है, फिलोसॉफी जिसको कहते हैं। तो ये जो दार्शनिक उपलब्धि है, यानी जैन दर्शन में बताई हुई ये महान हमें लाभ है, अपना उपलब्धि है, यह इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद एवं सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया गया है। यानी इसके ऊपर पार्टियां बन चुकी, ये क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हैं ऐसे करके दूसरे लोग कोई विरोधी करते हैं, कोई जानना चाहते हैं, कोई उसमें ग्रुप बना लेते हैं अपने अपने, परंतु ये तो अपना निर्णय करने के लिए विषय को ले लेना है। यह एक शुद्ध दार्शनिक विषय है, इसे वाद विवाद एवं हंसी मजाक का विषय न बनाकर इस पर विशुद्ध दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक यानी अपनी आत्मा का हमें पता लगाना है, अपनी आत्मा को पहचानना है, तो उसके लिए हमने देखा कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही मैं हूँ, तो सिद्धों का अरिहंतों का स्वरूप कैसे है, तो वितराग सर्वज्ञ है। तो ये जो सर्वज्ञता का निर्णय करना है उसमें ये क्रमबद्ध पर्याय का भी निर्णय इसी में गर्भित है। तो ये इसके लिए हमें अपने आत्मा को पहचानने के लिए हमें ये विषय जानना जरूरी है, इसीलिए इसके ऊपर गंभीरता से और सखोल विचार होना जरूरी है, क्योंकि निर्णय करते ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होना है। कभी निर्णय करना के नहीं करना, यह प्रत्येक की अपनी हाथ की बात है। जैन दर्शन से संबंधित होने से यहाँ इस विषय पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में संयुक्ति एवं सोदाहरण अनुशीलन अपेक्षित है। परिप्रेक्ष्य ने उसके संदर्भ में, उसके अनुसार उसके संदर्भ में, यानी जिनागम के आधार से ही इसको स्पष्ट करेंगे। कोई भी अपने मन से कोई यहाँ नया विषय प्रस्तुत नहीं किया है। जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है, दिव्य ध्वनि में जो बात आई, गणधर ने उसके ऊपर द्वादशांग की रचना की, और गणधर के द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ, अनेक आचार्यों ने उसको ग्रहण कर उसके उपदेश अनुसार स्वयं अनुभव करके ये बात अलग 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 विचारों से अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की है। तो ये आचार्यों ने जो लिखा है पूरा जिनागम, उसके अनुसार वहाँ कहाँ कहाँ इसके संदर्भ आते हैं, उस संदर्भ को साथ में लेते हुए हम इसका विचार करेंगे। क्रमबद्ध पर्याय से आशय यह है, इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। एक पर्याय की बात नहीं है, ये परिणमनशील, ये तो परिणमनशील कौन है? द्रव्य के पर्याय, क्योंकि परिणमनशीलता ये द्रव्य का गुण है, वो बात अभी पंचाध्याय में आएगी। ये परिणमन होने के लिए भी द्रव्य स्वतंत्र है और हर समय परिणमन करे, ये उसका स्वभाव है। यानी वो परिणमनशीलता नित्य है कि अनित्य है, बोलिए आप श्रीबेन, जरा विचार करेंगे। ये जो परिणमनशीलता है वो नित्य है कि अनित्य है? विचार करेंगे। आप नित्य कहते, आप क्या कहते हो? अनित्य। हाँ भाई, अनादिकाल से परिणमन हो रहा है। देखो, परिणमन अनित्य है, परिणमन यानी एक पर्याय, परंतु परिणमन होने का स्वभाव वो कैसा है? वो नित्य है। तो ये परिणमनशीलता है, वो द्रव्य का स्वभाव है। तो ये जो परिणमन, तो नित्य परिणमनशील जगत, जगत यानी उसमें विश्व में तो है क्या? छह द्रव्य तो है, तो ये छह द्रव्य नित्य ही परिणमन कर रहे हैं, ऐसा उसका अपना ही स्वभाव है। और ये परिणमन की व्यवस्था कैसी है? वो व्यवस्था कोई बाहर से करेगा? कोई जैसे हम कहते हैं कि आज हमने घर में कोई प्रसंग है, शादी है, तो उसकी व्यवस्था करने में हम जुट जाते हैं। ऐसे द्रव्य का जो परिणमन है, इसमें जुट जाते हैं, हम मानते हम करें, तो द्रव्य का जो परिणमन है वो करने वाला कोई ईश्वर होगा वहाँ, कि दूसरे कोई पदार्थ निमित्त आ गए तो ही परिणमन होगा, ऐसी है क्या? तो ये जो परिणमन व्यवस्था जो है वो द्रव्य का ही अंग है अपना, और वो क्रम नियमित है, सुनिश्चित है। जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है, ये निरंतर बात आई ना, परिणमन हो रहा है क्योंकि परिणमन करने वाला वो वस्तु तो गुण है, और वो निरंतर हो रहा है क्योंकि वहाँ द्रव्य तो गुण है। अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अधिक, क्योंकि वो तो आपका विषय हो चुका है। वह सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से हो रहा है। स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है, गहराई से विचार करने पर उसमें भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नजर आती है। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है नाटक का। यानी जो जो हमें ऐसा लगता है ये सारा अव्यवस्थित दिख रहा है, सब घोटाले घोटाले नजर आते, परंतु उससे भी एक एक पर्याय भी सुनिश्चित है और वैसी ही, वो उसी रूप से होने वाली उसके हर एक द्रव्य की पर्याय भी सुनिश्चित है। अभी उदाहरण पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो, जैसे कि नाटक के रंगमंच पर जो दृश्य व्यवस्थित दिखाई जाते हैं वे तो पहले से निश्चित और पूर्ण व्यवस्थित होते ही है। जैसे कोई घर का सेट लगाया है तो खिड़की है, उसमें पर्दे लगे हैं, सोफा बराबर साफ है, उसके ऊपर वो कपड़े डाले हैं, टेलीफोन रखा है, ये सारा जो है वो एक एक वस्तु कहाँ रखनी है वो तो निश्चित है और वो पहले प्री अरेंज वेल अरेंज है। किंतु जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाए जाते हैं वे भी पूर्व नियोजित एवं पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। अब समझो वहाँ गरीब की झोपड़ी दिखानी है, या कोई दारू पी के मस्त हो रहा है और उसके आगे, या कोई चोर है, चक्का आया है, उसने सब कपड़े इधर उधर कर दिए, तो वो भी सारे उसी ढंग से दिखाने हैं ना, कि बच्चे झगड़ रहे हैं और सब घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया, ऐसा दृश्य अगर नाटक में दिखाना होगा तो वैसे वो भी इधर उधर सब जगह जो है वो भी प्री अरेंज, उसको भी प्री सेट करना पड़ेगा ना कि ये बच्चे ऐसी कैसी भी यहाँ डालनी है या कोई कागज के ऐसे कचरा रखना है वहाँ मुरूम जो अव्यवस्थित दिखानी है, तो उसके लिए भी सारा प्लानिंग करना पड़ेगा वहाँ, नाटक की बात है यहाँ। वैसे हमें जो जो वस्तु में ऐसा दिखता है कि ये अव्यवस्थित है, बराबर नहीं है, वो भी उस वस्तु की अपनी वैसा ही पर्याय की योग्यता से वो पर्याय बनी है। ये नाटक का इतना ही लेना उसका उदाहरण, नाटक को करने वाला और उसकी व्यवस्था करने वाला कोई है, वैसे वस्तु में कोई करने वाला नहीं है। उदाहरण तो उतना ही होता है पार्टली। हाँ हाँ जाता है। हाँ आयोजित यानी किसी ने की नहीं है। हाँ वो ऐसा ही। हाँ आयोजित हम समझाने के लिए कह सकते हैं, तो पूर्व आयोजित ने ये ऐसे ही सुनिश्चित है, ऐसा कम हम कह सकते हैं। हाँ ये सब निश्चित है, सारा ही निश्चित है, यानी किसी ने निश्चित किया नहीं है। अब अनंत काल बाद क्या होने वाला है वो भी सुनिश्चित है, अपनी अभी इसके आगे की भी सारी पर्याय निश्चित है, पूर्व की होगी तो वो भी निश्चित हुई थी वही हो गई, हम यहाँ आकर अभी पढ़ रहे हैं, वो सुनिश्चित है क्या? इन्होंने बुलाया सबको इसलिए आ गए आप? निश्चित है, और उनका बुलाना वो जो निमित्त है वो भी निश्चित है। ये सारा सुनिश्चित है, तो इसके हम देखेंगे आगे चर्चा करेंगे। देखो आगे सॉरी, एकदम व्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी रईस की कोठी जिस प्रकार पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार अव्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी गरीब की झोपड़ी भी अनियोजित और अव्यवस्थित नहीं होती, अपितु वह भी पूर्णतः नियोजित और व्यवस्थित ही होती है। उसको भी वो सारा वैसा ही गरीब का झोपड़ी जैसे दिखनी चाहिए वैसी वो दिखेगी और वैसी उसमें वस्तुएं रखी जाएगी। उसकी टूटी खाट और फटे कपड़े दिखाने के लिए पहले से ही साबुत खाट तोड़ने एवं साबुत कपड़े फाड़ने पड़ते, कहीं थाली पड़ी है कहीं लोटा, यह बताने के लिए व्यवस्थित रूप से एक निश्चित स्थान पर थाली और दूसरे निश्चित स्थान पर लोटा रखे जाते हैं। जैसे देखते हैं ना कोई भी पिक्चर में है हीरोइन को दिखाना है वो तो ठाट बाट बराबर रखे, और कोई भिखारी की लड़की दिखाना है तो उसकी वैसे भी बाल बिखरे है फटे कपड़े, मगर वो भी उसके बाल बिखराने पड़ेंगे न और कपड़े भी फाड़ने पड़ेंगे। वैसे ये जो जो अव्यवस्थित हमें दिखाई देता है वह भी सुनिश्चित है, इतना उसमें से उदाहरण वहाँ लगा लेना। जिस प्रकार उक्त यानी ऊपर बताई हुई अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्व निश्चित और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणमन भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। जिस प्रकार नाटक में दृश्य क्रमशः आते हैं, एक साथ नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक एक घटना घटती जाएगी, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में पर्याय क्रमशः ही होती है, एक साथ नहीं, क्योंकि एक एक समय की एक एक पर्याय है, दो समय की पर्याय एक साथ हो ही नहीं सकती है, तो और वही होगी जो उस समय होने वाली है, दूसरे नंबर की दूसरे नंबर पर होगी, तीसरे की तीसरे नंबर पर, चौथे के, ऐसे पर्यायों का अनादि से अनंत काल का क्रम सुनिश्चित है, और ये निश्चित कोई अन्य द्रव्य ऐसा निमित्त आया इसलिए उसको ऐसा हुआ, हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाते दूसरे के पास जाते तो हमको जल्दी आराम आता है ऐसे विचार आते हैं, परंतु ये सारा ही सुनिश्चित है, हमें गड़बड़ लगती है ना, या किसी ऐसा हो जाता है कि घर में कोई बीमार हो या कोई बहुत रोगी, तो ऐसे यहाँ जाना का वहाँ जाना, उसमें हम कितने नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कोई भी वस्तु खरीदनी है, घर लेना है या शादी करना है या कोई भी जो ये लड़की दूसरे में जाना है, तो उसके लिए हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते, अरे इसको नक्की करेगी उसको नक्की करेगी, ये सारा नक्की है, तब इसका भी पढ़ाई में ये लौकिक तरीके से भी अगर इसका विचार करेंगे तो बहुत शांति और आकुलता नष्ट हो जाती है। शांति तो आती है और आकुलता जाती है, भले वो प्रयत्न भी हो गए सारा उसी प्रकार से होगा, परंतु उसके पीछे जो हमारे ऐसे माइंड बहुत चिंतित हो जाता है, हम दोलायमान होते हैं, क्षुभित हो जाते हैं, तो ये सारा शांति हो जाएगी। यानी ये लौकिक शांति भी होगी या अलौकिक शांति और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी वो तो बात है ही है, उसके पहले भी इतनी सारी बातें सुनिश्चित जानकर उसके बारे में अपने विकल्प कम होते। नाटक में भी यह भी तो निश्चित होता है कि किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा, उसी प्रकार पर्यायों में भी यह निश्चित होता है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी। जिस प्रकार जिसके बाद जो दृश्य आना निश्चित होता है उसके बाद वही दृश्य आता है अन्य नहीं, उसी प्रकार जिसके बाद जो पर्याय होनी है यानी जो कार्य होना है वही होती है अन्य नहीं, इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। यानी पर्यायों का पूरा ही क्रम और जो पर्याय होनी है वह पर्याय भी सुनिश्चित है, वही होगी उसी समय होगी उसी निमित्त से होगी, अरे वैसे ही पुरुषार्थ पूर्वक होगी। क्योंकि हमारा क्या है, सर्वज्ञ ने जाना है तो जब होना है तब होगा, तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा। प्रश्न तो हर एक को यही एक पहले में पहले क्रमबद्ध का जब प्रश्न उठता है, और वो भी कहाँ हमें हम वो सिद्धांत कहाँ लगाते कि हम अस्वाध्याय क्यों करें, जब हमारा मोक्ष करने ने देखा है तब मोक्ष होगा। परंतु ये बात हम खाते समय नहीं लगाते, धन कमाते समय ऐसा नहीं जितना मिलना है और जो सर्वज्ञ ने देखा है वही लेगा, हमें क्यों ज्यादा तकलीफ करनी है, वो सवाल कहाँ आता है, शास्त्र स्वाध्याय में। जो अपने रुचि का पदार्थ है वो सामने होगा तो ये मुंह में जाने वाला होगा तो जाएगा, मैं बैठा हूँ ऐसा देखो, ऐसा करके कोई नहीं बैठेगा वहाँ, तो बराबर चाव से भोजन करता है। तो ऐसे जिसको कहीं जिसकी रुचि लग गई है, अपने स्वरूप की रुचि हो तो वह भी इसका निर्णय सही हो जाता है, और वो क्रमबद्ध पर्याय वो पुरुषार्थ से होता है नहीं होता, ये सारी बातें अभी क्रम से यहाँ होगी। आपके जो जो प्रश्न है ना क्रमबद्ध पर्याय के बारे में वो निकाल के रखना, लिख के रखना, और इसमें जो जो नहीं इसमें निकालेंगे तो बाद में उसको पूछना। तो हम सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, पहले तो थोड़ा इसमें से पढ़ लेंगे और बाद में अलग अलग प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा भी करें। प्रत्येक द्रव्य की वह परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं स्वाधीन भी है, ये मुख्य है। व्यवस्थित है परंतु किसी ने की होगी तो व्यवस्थित होगी ना, ऐसा नहीं, वो स्वाधीन है। स्वाधीन यानी किसके अधीन, मनुष्य के अधीन होगी और खुदगल की। हाँ, और मैं क्या मानता हूँ, अरे इसको तो ये अज्ञानी है, ये कैसे ऊपर जाएगा, मैं इस यहाँ से उठा के रखूंगा तब ये जो लकड़ी का स्टैंड है उसमें तो कुछ अक्कल नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो अपने आप ऊपर कैसे जाता है। तो उसमें जो परिणमन व्यवस्था है वो स्वाधीन है प्रत्येक द्रव्य में। हमें तो ऐसा ही लगता है ना कि ये तो जीव चेतन है, वो तो जानता है, तो जानता है तो अपनी परिणमन कुछ न कुछ करता है, यानी हम सोच समझकर अपना परिणमन कर रहे हैं, ऐसी उसके पीछे अपना अभिप्राय पड़ा हुआ है कि हमने सोच समझकर यहाँ आए तभी तो हम यहाँ आकर बैठे स्वाध्याय में, हम नहीं चाहते तो नहीं आते थे। परंतु ये तो जीव की हो या पुद्गल की, हर पर्याय स्वाधीन है, उस द्रव्य के अधीन है, अन्य किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं। देखो जब जब शास्त्र में बात है ना, दो ही अच्छी नास्ती दोनों ही तरफ से बताइए, यानी उसको पक्का करने के लिए, स्वाधीन है पराधीन नहीं, दोनों तरफ से बताया। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वो तावीज है ना आपका, साइंस को बताया ना, शाम को दिया ना आपको, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं कर कुछ नहीं करता उसका। तो इसमें क्या लिखा, एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। सर्वज्ञ ने जाना है तो हमारे द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप हो रहा है इसी बात नहीं है, वो तो ज्ञान का अपना स्वभाव है जानने का, उसके कारण किसी अन्य का परिणमन उसको बदलना पड़े क्या करे, अभी सर्वज्ञ ने जाना है कि नहीं जाना, हमको समय दर्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला, इसलिए जो उसके भरोसे पड़ता है उसको समय दर्शन नहीं होगा। यानी उसने अभी सर्वज्ञ को सच्चा माना ही नहीं है। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंकुंड के प्रसिद्ध ग्रंथराज समय सार की गाथा 308 से 311 तक की आत्मख्याति नामक टीका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, अच्छा मैंने जो अभी कोट किया था वो 320 में, 308 से 311, वो 320 की अलग बात थी। हाँ देखो क्या कहते हैं, ये संस्कृत पढ़ती उसका अर्थ भी बताएंगे। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पत्ति मानो जीव एव न अजीव। क्या कहते हैं, जीव ही अपने क्रम नियमित आत्म परिणाम यानी अपने अपने परिणाम, आत्मा के परिणाम ऐसा नहीं लेना, आत्म यानी स्वयं, हम स्कूल में लिखते हैं ना उसका आत्मचरित्र लिखो, क्या पुस्तक का आत्मचरित्र लिखो, खाते का आत्मचरित्र लिखो, ऐसे विद्यार्थियों को देते हैं ना निबंध लिखने के लिए, तो उसमें आत्म यानी अपना, तो इसे अपने परिणामों से उत्पद्य मानो यानी उत्पन्न होता हुआ जीव ही है न अजीव, अजीव नहीं है, एवं उसी प्रकार अजीवो की अजीव भी क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीव एव न जीव। ये संस्कृत आती है ना, इस तरह से पढ़ना उसको, जैसे उसको फोड़ किया ना, इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अपने ख्याल में आता है। उसी तरह अजीव भी जब ऐसा वो एस टाइप आता है ना बीच में, अजीवो भी पी, अजीवो पी यानी अपी अर्थ होता है इसका, बीच में ऐसा एस टाइप लगाया तो उसको कहते हैं वो अपी। अजीव भी अपने अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। इसी कार से यह हिंदी में आगे बताया, प्रथम तो जीव क्रम नियमित, इस क्रम नियमित शब्द से ही क्रमबद्ध ये ऐसा शब्द निकाला, तो क्रम नियमित कहो या क्रमबद्ध कहो एक ही बात है, तो क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। यानी अभी यहाँ शरीर है, जीव भी है, जीव अजीव दोनों है ना, तो शरीर में एक एक परिमाणु में अपना अपना क्रम नियमित परिणमन हो रहा है और वो कभी भी जीव नहीं हुआ। वैसे जीव में भी अपना अपना क्रम नियमित सारा परिणमन हो रहा है, कभी भी वो शरीर रूप नहीं हुआ। अनादि से अनंत भव हमने किए, उसमें अलग 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 शरीर धारण किए, परंतु आज तक हम कभी शरीर रूप हुए ही नहीं। भले जीव ने माना कि मैं शरीर रूप हूँ, परंतु जीव और शरीर, जीव और अजीव द्रव्य कभी भी एक में हुए नहीं, कभी भी एक दूसरे का काम भी नहीं किया। हम तो मानते हैं ना सुबह से शाम तक एक तो हम अपने को शरीर रूप ही मानते हैं और इसका सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, ये समान यानी अनंत अजीव द्रव्यों का कार्य मैं कर रहा हूँ ऐसी अपनी मान्यता है, परंतु ये अनंत परद्रव्यों का अपने अपने में क्रम नियमित परिणमन हो रहा है। एक बाल का भी परिणमन हम यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते, परंतु सारी हमारी जिंदगी इसी में चली जाती है कि शरीर को ठीक रखो, शरीर को ऐसा करूँ, शरीर को वैसा करूँ, पैसे कमाऊ, पैसे खर्च करूँ, ये सारी अकुलता है। परंतु यहाँ क्या कहते हैं कि सारे ही अजीव अपने अपने परिणामों से क्रम नियमित परिणमन है उनका, तो जिसका परिणमन क्रम नियमित है अभी उसमें हम क्यों माथा फोड़े। इतनी तो निराकुलता होनी चाहिए कि वो अजीव का परिणमन उसमें अपने कारण हो रहा है और मेरा भी परिणमन मेरे अपने कारण से हो ही रहा है, अपने भी पर्यायों की चिंता छूट जाए कि मुझे अपनी भी कुछ पर्याय परेशानी है, ये चिंता उसमें जो विकल्प उठते रहते हैं उसके ऊपर जो हमारे चिंताएं होती है, आकुलता होती है, वो नष्ट हो जाती है। यहाँ समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या? क्या है जीव जगत में, ये विश्व में? हाँ, छह द्रव्य है, उसमें एक तो जीव है और बाकी पांच द्रव्य तो अजीव है। तो इस जगत में जीव अजीव के अलावा कुछ है ही नहीं है। जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व अर्थात जगत है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। क्रम नियमित और क्रमबद्ध शब्द एकार्थवाची ही है, यानी एक ही अर्थ को बताने, दोनों का अर्थ एक ही है, ऐसा कि जैन तत्व मीमांसा में स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें क्रम नियमित है, एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती है। देखो, प्रत्येक द्रव्य में उसकी प्रत्येक पर्याय उसके अपना अपना निश्चित जो काल है उस काल में ही होगी। परकाल की अपेक्षा देखो तो भी उसको अपने ही काल में होगी। परकाल यानी क्या? अभी हम कहते हैं कि आज कौन सा दिन है, तो आज है 20 जनवरी, तो इस समय में यही पर्याय होगी। ये तो काल अपेक्षा, परकाल की अपेक्षा कथन किया, परंतु उसकी भी अभी जो ये भाषा का जो कार्य हो रहा है, भाषा वर्गना है, शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं, तो ये अजीव है, अजीव द्रव्य की ये पर्याय है ना, तो उसका भी अपना काल कुछ होगा ना। ये जो भाषा रूप जो वर्गना है, अभी जो शब्द रूप परिणमित हो रही है, वो जो पुद्गल का परमाणु का अभी उस भाषा वर्गना रूप है, कुछ काल पहले वो किसी अन्य रूप वर्गना रूप होगी, कार्बन वर्गना होगी, औदारिक वर्गना होगी, या अन्य भी जो जीव के संबंध में नहीं आती है ऐसे अन्य वर्गना रूप होगी, या अकेला पुद्गल परमाणु रूप होगी, उस पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी अवस्था, उसका पर्याय उसी समय निश्चित है, वो पर्याय कोई उसका स्वकाल का। वैसे द्रव्य का अगर काल देखो कि अनादि अनंत पूरा नित्य जो प्रवाह है पर्यायों का, उसको द्रव्य का स्वकाल कहते हैं, और पर्याय का स्वकाल वो उस विशिष्ट एक समय वाली वो पर्याय का काल है। वैसे ये अलग अलग अपेक्षा से बात आती है शास्त्र में, तो क्या कहते हाँ, हरेक का अपना स्वकाल ही है, परंतु दो द्रव्यों की अभी हम देखते हैं, हम कहाँ अभी हम घड़ी में देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये 9:20 हुए अभी, ये तो ये हम समझाने के लिए उसको हम परकाल कहते हैं, मगर हर एक पर्याय का अपना ही स्वकाल है। पर्याय में तो अपना ही काल होता है, परकाल से तो समझाया जाता है, दो द्रव्यों का सापेक्ष कथन है। अभी आप यहाँ पर बैठी हो, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, तो हम कैसे समझाएंगे? तो जब ये हम सारे इकट्ठे बैठे हैं अभी, तो आपकी अपेक्षा हम आमने सामने बैठे, पर आप अपने में बैठी हो, आप अपने में हो, मैं अपने में हूँ, तो दो ही द्रव्य अपने में अपने में है। तो अभी हम सामने ऐसे बैठे हैं, तो आपकी अपेक्षा हम कहेंगे हम अपने आमने सामने बैठे। वैसे जैसे हम कहते ना कि ये वस्तु कहाँ रखी है, कपाट में हमने एक रुपए की थैली रखी है, यानी एक थैली में रुपए रखे हैं, तो भी हम कहते ना कपाट में थैली है, थैली में रुपए है, तो रुपये कहाँ है? रुपया रुपया में ही है, उसका अस्तित्व कहाँ है? अपने में है, परंतु सारे ही द्रव्य अपने में है, अनंतानंत द्रव्य विश्व के अपने अपने में है, फिर भी हम समझे कैसे कौन कहाँ है? तो ये एक दूसरे की सापेक्षता से, रिलेटिविटी जिसको कहते, तो सापेक्षता से कथन होता है, ज्ञान होता है कि ये कपाट है, उसमें थैली रखी है, उसके अंदर पैसे रखे हैं, तो हम अन्य अन्य चीजों की अपेक्षा से उसको समझाते। वैसे हर एक द्रव्य अपने अपने में, हर एक पर्याय अपने अपने समय पर है, पर अपने अपने समय कैसा हम कहें, तो उसको समझाने के लिए हम वो काल की अपेक्षा यानी व्यवहार काल की अपेक्षा आदि बातें करते, वो तो व्यवहार काल है, निश्चय काल जो स्वकाल कहते हैं, वो पर्याय क्या अपने काल वो उसका स्वकाल हुआ। संयोग और वियोग होते हैं, परंतु वो पर्याय का भी अपना अपना कार्य है। संयोग की अपेक्षा देखकर हम उसको समझा सकते हैं। ये सारे संयोग वियोग होते रहेगा, क्योंकि पुद्गल ही दृश्य है ना, हम तो दृश्य पुद्गल को ही देखकर ये सारा समझा रहे, परंतु जीव तो अरूप ही है। अभी संयोग वियोग कब तक होते रहेंगे? हाँ, अभी सिद्ध भगवान होने के बाद उसको वो शरीर रूप से संयोग नहीं होगा, परंतु पुद्गल तो पुद्गल रहेंगे ना, इस विश्व के पुद्गल तो कहीं चले नहीं जाएंगे, तो छह ही द्रव्य होंगे, क्योंकि द्रव्य का तो कभी नाश होता ही नहीं है। अभी नाश नहीं होता है तो जो उनमें कौन सा संबंध होगा? एक क्षेत्रावकाश नित्य तादात में किसका किसके साथ होगा? द्रव्य का गुणों के साथ, और अनित्य तादात में द्रव्य का पर्याय के साथ, वो अनित्य तादात में हुआ। और जो दूसरे द्रव्य के साथ संबंध है वो एक क्षेत्रावकाही संबंध होता है, वो भी कौन सा? ये छह द्रव्यों का आपस में एक क्षेत्रावकाही संबंध है, एक ही क्षेत्र में व्याप्त है। परंतु ये जो आप संयोग की बात कर रहे हैं, तो संयोग विशिष्ट पुद्गल के साथ है। अभी इस शरीर में इतने परमाणु है, इसके साथ संयोग है। हर समय अनंत परमाणु इसमें से निकल रहे हैं, हर समय दूसरे अनंत आ रहे हैं, तो उसके साथ अभी हमारा कुछ काल के लिए संयोग है, उसका वियोग भी हो रहा है। ये संयोग वियोग चलता है, परंतु अपनी दृष्टि कहाँ है? हाँ, पर्याय। वो किसकी पर्याय? पर की, वो भी संयोग में आने वाले पर द्रव्यों पर और उसकी पर्यायों पर नजर है। तो हमें अपने द्रव्य को पहचानना है, तो पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ 25 चीजें रखी है, या अलग अलग मेटल्स रखे हैं, उसमें सोने को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? क्या जाना? जैसे लोहा पड़ा है वहाँ, पीतल पड़ा है, और भी तांबा है, ये सारे धातु है, तो उसमें सोने, हाँ, उसका जो गुणधर्म जिसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जिसको लक्षण कहते हैं, तो लक्षण से वो जो लक्ष्य पदार्थ है, लक्ष्यभूत पदार्थ, उसको जानते हैं। तो हमें अपने को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? अपना लक्षण जानना पड़ेगा। तो अपना कुछ लक्षण है कि जिसे हम जान सकते हैं? तो गुण दिख रहा है क्या आपको? मुझे दिखा, गुण कहाँ दिख रहा है? हाँ? देखो, अभी ये गुण कहने से तो कोई गुण तो दिखता नहीं हमें। आपने ज्ञान गुण को देखा, तो उसकी जो पर्याय हो रही, कौन सी पर्याय हो रही है? जानन 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 जानन, जानने रूप जो कार्य चल रहा है। तो आपको मैं कुछ जान रहा हूँ ऐसा आपको एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मेरे ख्याल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये जो बातें है ना, कि ये हमने इसको सामने देखा, ये क्या है, कैसा है, हरे रंग का है, ये हरे रंग का है, ये किसने बताया, इस वस्तु ने बताया? तो हाँ, ज्ञान ने जाना उसको, ये तो जानने का कार्य हो रहा है। अभी इसकी तो हमें पता है कि यहाँ जानने का कार्य हो रहा है, परंतु हमने क्या देखा कि वो ये आंख देख रही है, आंख जान रही है, ऐसा जो हमारा लक्षण है वो हमने किसको सौंप दिया? अजीव को। हाँ, आंख को सौंप दिया। हम क्या मानते हैं? आंख ने देखा, परंतु ये जो इस कलर का निर्णय किया वो किसने किया? आपने, ज्ञान गुण ने किया, यानी वो आत्मा में ये सारा निर्णय हुआ है, यानी ये उसमें निमित्त है अभी आंख का। अभी चश्मे ने देखा, चश्मा नहीं है तो अभी दिन दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या माना है? चश्मे ने देखा, तो अभी इसको देखने दो, इसको ज्ञान होगा? नहीं होगा। वैसे मुर्दे को भी आंख है, वो भी नहीं देख रही है। तो ये जो निर्णय करने वाला, जानने वाला है, यहाँ जो ये कार्य हो रहा है वह मैं हूँ। अपने को लक्षण से जानना है, तो ये जो अपना कार्य अपने ख्याल में आ रहा है, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, उसको तो ऐसे बता नहीं सकते जैसे पेंसिल इसको बता सकते हैं, जो देर को परंतु आत्मा को अभी हमने, यानी अभी तक हम तो पुद्गल को ही जानते रहे, जान तो हम रहे, परंतु हमने जो ज्ञेय जाना वो ज्ञेय के ऊपर हमारा सारा 100% लक्ष्य है, उसकी का भरोसा है। ये जानने वाला मैं कौन हूँ कोई अलग चीज है, और ये सारा जो जानन रूप कार्य हो रहा है वो मेरे में हो रहा है, ऐसा एहसास अभी तक नहीं था। तो ये जो लक्षण है वो जो ज्ञान में आ रही है, ये तो सारा ज्ञान ही तो है, ये वस्तु है आपके ज्ञान में के इस संबंधी निर्णय है। हाँ, ये अभी ये वस्तु, अभी हमने इसको ग्रीन है ऐसा जाना, तो ये वस्तु अंदर चली गई, तो अंदर क्या हुआ? हाँ, उस संबंधी जो हमने निर्णय किया, ये चौकोर है, इसका कलर ऐसा है, ये ऐसे ऐसी है, प्लास्टिक है, कड़क है या नरम है, ये सारा जो निर्णय हुआ, ये जो ज्ञान हुआ, यानी हम जो अभी जान रहे हैं वो अपने ज्ञान के निर्णय को ही जान रहे। देखो ये सारी बातें अभी आएगी, ये जरा गहरा विषय चल रहा है। तो ये जो सारा हम देख रहे हैं ना, हमें जो लगता है कि हमने इसको देखा, तो हमने किसको देखा, हमने किसको जाना? हमने तो अपने ज्ञान के निर्णय को जाना। आप गाड़ी चलाते हो ना, तो सामने आईने में देख रहे हो, क्या देखते हैं? पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो आपको पूछा क्या देख रहे हैं आप, तो हम ये देख रहे हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आती है ना, तो आप तो सामने देख रहे हो, और पीछे की गाड़ी के बाद क्या करे, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना, इसको हम देख रहे हैं, तो देख कहाँ रहे हो? सामने अरिसे में, वो जो आईना लगाया है वहाँ उसमें देखते हैं, और निर्णय क्या करते हैं, अरे पीछे कोई गाड़ी नहीं ना, चलो मुझे अभी राइट टर्न लेना है, तो कोई पीछे से गाड़ी तो नहीं है ना, तो वो हम सामने देखकर सारा निर्णय हो जाता है। पर ऐसा कोई कहता नहीं कि मैं आरफा देख रही हूँ, तो क्या कहते, हम पीछे का ट्रैफिक देख रहे हैं, वैसे हम ये वस्तुएं नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे, अपने ज्ञान ने जो जो निर्णय किया है, जो जो वस्तु को जो जाना है उसको हम जान रहे। तो ये जो लक्षण है, ये जो ज्ञान हो रहा है वो मेरा कार्य है, और उस लक्षण के द्वारा हम आत्मा को पकड़ेंगे। ये बहुत गहरे हो गए की बात है, ये कहाँ से कहाँ चली गई, ये शांत हो गया। देखो तो ये पढ़ा ना पहले कि प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम नियमित है, एक के बाद एक अपने अपने स्वकाल में निश्चय उपादान के अनुसार होती रहती है। यहाँ पर क्रम शब्द पर्यायों की क्रमाभिव्यक्ति, क्रम अभिव्यक्ति को दिखलाने के लिए स्वीकार किया है, और नियमित शब्द प्रत्येक पर्याय का स्वकाल अपने अपने निश्चय उपादान के अनुसार नियमित है, यह दिखलाने के लिए किया गया है। देखो दो शब्द है ना इसमें, क्रम और नियमित। क्रम यानी उसका क्रम बताते हैं कि पहले समय दर्शन होगा, मुनि अवस्था होगी, अरहंत अवस्था होगी, फिर सिद्ध अवस्था होगी, तो ये क्रम निश्चित है। ऐसा नहीं कि कोई पहले अरहंत होगा बाद में मुनि दीक्षा लेगा, या पहले मुनि होगा और बाद में वस्त्र का त्याग होगा, ऐसा नहीं होगा। वो वस्त्र का त्याग होने रूपी सारी जो अवस्था है वो भी क्रम नियमित है, उसी क्रम से होगी। पहले तो जिन दीक्षा ली जाएगी, द्रव्यलिंग का प्रथम ग्रहण होगा, फिर भावलिंग प्रकट होगा, भावलिंग के प्रकट पूर्वक आत्मा में स्थिरता होगी, तब जाके वहाँ अरिहंत दशा प्राप्त होगी। ये सारा जो क्रम है, पहले तत्वाभ्यास होगा, यानी तत्व की रुचि होगी, तत्व का अभ्यास होगा, वारंवार आत्मोन्मुख परिणाम होंगे, तब जाके सम्य दर्शन होगा। ये भी सारा जो क्रम है वो निश्चित है। तो ये क्रम शब्द क्रम की अभिव्यक्ति, यानी क्रम को बताने वाला है, और नियमित शब्द हरेक पर्याय का अपना अपना स्वकाल, स्वकाल भी निश्चित है और अपना अपना उपादान के अनुसार नियमित है। नियमित यानी वही होगी, पर्याय अन्य नहीं होगी, वो सुनिश्चित है, यह दिखलाने के लिए दिया गया है। वर्तमान काल में जिस अर्थ को क्रमबद्ध पर्याय शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्रम नियमित पर्याय का वही अर्थ है, यानी क्रमबद्ध पर्याय कहो या क्रम नियमित पर्याय कहो, एक ही अर्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्याय क्रम से होती है, यानी उतना ही केवल नहीं कहा, क्रम से तो होती है, परंतु मात्र क्रम से होती इतना ही नहीं बताया, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम में होती है। अकेले क्रम से होती है, एक के बाद एक होती इतना ही नहीं कहा, परंतु उनका क्रम भी निश्चित है, निश्चित है। हाँ, आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है। कितनी बातें आई देखो, जिस द्रव्य की जो पर्याय, तीसरा आंकड़ा जिस काल में, चौथा जिस निमित्त से, पांचवा जिस पुरुषार्थ पूर्वक और जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। देखो यहाँ भी है कहेंगे और अन्य प्रकार से नहीं, दोनों तरफ से उसको पक्का करेंगे, अन्यथा नहीं, यह नियम है, ऐसी सुव्यवस्था है। हाँ, ये कौन कौन सी बातें बताई, देखो जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त से जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है वैसी होगी। देखो ये क्रम से हम उसमें सहस द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी घटाएंगे और पांच समवाय भी घटाएंगे, सारी बातें इसमें आ जाएगी। अभी जो हमने मंगलाचरण देखा था, यानी स्वामी कार्तिकेय ने जो 12 भावनाएं लिखी है वो ग्रंथ है उनका, तो उसमें ये अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा था उसको दोबारा पढ़ते हैं। जैसा कि कार्तिकेय अनुपेक्षा में कहा गया है, जम जस्त जम्मी देते जेन विहाणेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा तम तस्य तम्मी देते तेन विहाणेन तम्मी कालम्मी कोसक्त दिवारे दुम इंदो वा तह जिनिंदो वा एवं जो निश्चयदो जानती दौवाणी सव पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। उसका अर्थ बताते हैं कि जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण, ये लिखा तो जन्म और मरण, उसके बीच की सारी घटनाएं जान लेना, जन्म से मरण तक की जो एक एक समय में जो जो कुछ बन रहा है वो सारा जिन देव ने नियत रूप से जाना है, नियत रूप से निश्चित रूप से, उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है, इसे जिनेन्द्र इंद्र अथवा जिनेन्द्र कौन टाल में समर्थ है, अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता है। इस प्रकार निश्चय से ने, हाँ खरेखर सुनिश्चित निश्चय से जो द्रव्यों को, यानी सभी द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है, वह सम्यक दृष्टि है। अभी हम तो सब द्रव्य और सब पर्याय नहीं जानते, परंतु हम निर्णय तो कर सकते हैं कि सभी द्रव्यों में उसकी सभी पर्यायों में ऐसा ही सुनिश्चित उसकी व्यवस्था है, इतना तो हम निर्णय कर सकते हैं। हाँ देखो, सब पर्यायों को जानता है नहीं, हम तो सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को जानते नहीं है, परंतु हम ऐसा जानते हैं ना, परोक्ष से जानते हैं। कैसा, कितने द्रव्य है, 6 द्रव्य। अभी 6 द्रव्य की कितने पर्याय हो सकती है उसमें, अनादि अनंत की सारी पर्याय, कितने कितने समयों में एक एक पर्याय होगी, एक एक समय में एक एक पर्याय होगी। अब ये जो सारी द्रव्यों की सारी ही पर्याय क्रमनियमित होती है और वे सुनिश्चित है, इसका हमने ज्ञान किया कि नहीं किया, हमने पर्याय देखकर नहीं किया है, परंतु जो सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष देखा, जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया और जो उन्होंने शास्त्र में जो रचनाएं की आचार्यों ने, वो तो उन्होंने प्रत्यक्ष देखकर सर्वज्ञ ने बताया, और हमने कैसे बताया, परोक्ष। ये आगम को भी प्रमाण ज्ञान कहते हैं, ये हमारा प्रमाण ज्ञान है, आगम से हम जानते हैं और आगम ज्ञान को प्रमाण ज्ञान में आता है। जैसे आपको पूछा आपकी ब्लड शुगर कितनी है, हमने बोला 120 है या 140 है, जो कुछ है, कैसे जाना, ये क्या रिपोर्ट है हमारे पास लिखा हुआ, तो उसमें तो हमको कितना खातरी है, 100%। ये जिनेंद्र भगवान पर भी इतनी खातरी नहीं है, कहते तो उनको सर्वज्ञ है, परंतु जो ये हमारे हम पैसे देकर कुछ जांच करवा लेते हैं, उसमें जितनी हमारी दृढ़ श्रद्धा है, क्या हमको जिनवाने पर उतनी श्रद्धा है, अपने आप को पूछना कि यहाँ लिखा है ऐसा नहीं होता होगा, उसमें इतनी श्रद्धा नहीं है। जैसे हम एक ब्लड रिपोर्ट देखते या डॉक्टर ने इतना लिखा दिया, हाँ उसको इतना तंतोतंत करेंगे, परंतु ये आचार्य यानी आचार्य में ऐसा लिखा है, ये श्रावक के ये कर्तव्य, ये होते होंगे, वो तो क्या पुरानी बात है, तभी होती होगी, अभी नहीं होती है, यानी उसमें हमारा अभी ऐसा उत्साह नहीं है, उसमें ऐसा उसमें विश्वास भी नहीं। देखो ये अपने अपने खुद को पूछने की बात है, ये दूसरे को दिखाने के लिए तो है ही नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान कहते ही वो सर्वज्ञ का स्वरूप हमारे ख्याल में है क्या, कि जो साधारण भी जो कुछ डॉक्टर जो कुछ अधिक जानता है अपने से, उसकी भी बातें हम कितनी बराबर आज्ञा शिरोधार्य जैसा करेगा उठक बैठक वैसे करेंगे, और जो वहाँ लिखा है रिपोर्ट में उसको बिल्कुल भले वो गलत देख कर रिपोर्ट दूसरे को भी आ जावे, परंतु हम तो अपना ही करके है ना, ऐसे किसी को गलत रिपोर्ट आ गया है तुमको कैंसर है, तो वो देख कर ही हार्ट अटैक आके मर जाएगा, और बाद में पता चलेगा क्या ये किसी दूसरे का रिपोर्ट उसके नाम से छपवा दिया है, होता है कि नहीं, ऐसे हम देखते दाखले मरे भी है। हाँ तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये आपका प्रश्न का उत्तर है कि हम सब द्रव्यों की सब पर्याय जानते तो नहीं है, तो कैसे जानेंगे, तो सब द्रव्यों की सब पर्याय किसने देखी, सर्वज्ञ ने देखी, तो सर्वज्ञ ने ये बताया है, तो हम उसको सर्वज्ञ का निर्णय करेंगे तो वो सम्य दृष्टि देगा का मिथ्या दृष्टि देगा, जिस समय सर्वज्ञ का निर्णय हुआ उस समय उसने स्वभाव को पकड़ा, समय भेद भी नहीं है, और उस समय उसको समय दर्शन हो गया, यानी वो निर्णय तो सर्वज्ञ का करेगा, और अनुभव तो यानी वो विकल्पात्मक से वो निर्विकल्प हो जाएगा, और उस निर्विकल्प का प्रथम समय में उसने सर्वज्ञ का सही निश्चय किया। पहले तो विकल्पात्मक भूमिका में सर्वज्ञ का निश्चय करेंगे, पहले तो हम शास्त्र से पढ़ेंगे, फिर अपने युक्ति अनुमान सारा जो जो हमने पढ़ा है लॉजिकली पूरा उसका सोच विचार करके, जब सर्वज्ञ की महिमा आती है कि हाँ उनका कैसे उन्होंने कितनी कितनी बातों को जाना है, तो जब एहसास होता है सर्वज्ञता का तो विकल्प मंद पड़ते पड़ते छूट जाते हैं, पता ही नहीं कब छूटे, और स्वरूप को पकड़ लेता है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। इसलिए क्या कहा, किसी भी ऐसा भी कहेंगे जिसको क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय होगा वो समय दृष्टि है, और यहाँ क्या लिखा, समय दृष्टि ही समय ज्ञानी होता है, नहीं वो सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभव हो गया, हाँ पर नहीं जानता है ना, जानना तभी कहेंगे वही सच्चा जानना है, ये तो शास्त्र से खाली उस संबंधी ज्ञान किया उसको नहीं जाना। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार निश्चय से ये ऐसा ही है ऐसा जो जानेगा, निश्चय से ने ये निश्चय ने की बात है, व्यवहार ने की बात ऐसा नहीं है वहाँ कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय क्रम नियमित सुनिश्चित ही है, ऐसा ही है ऐसा जो पक्का जानेगा, बिल्कुल इस प्रकार निश्चय से यानी वास्तविक ऐसा ही है जो द्रव्यों को यानी सभी द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ये जो सम्यक दर्शन करना है तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा भी आवश्यक है। नहीं, देखो ये निश्चय से अपने कुछ पर्यायों को देखकर वो नहीं कह सकता, ये उसने कैसा जाना कि ऐसा ही होना था कि हो चुका इसलिए मैं बोल लिया ऐसा ही होना था, कहाँ देखा उसने, पर्यायों की तरफ देखा, परंतु वस्तु का ये जो पर्यायों की जो क्रमबद्धता, वो किसका स्वरूप है? वस्तु का अपना कर्म है। तो वस्तु की तरफ देखकर ये निर्णय होना है। तो ये अनादि अनंत पूरा प्रवाह, जो हम कहते हैं कि समय दर्शन का विषय जो है वो क्या है कि अपना द्रव्य है, वो कैसा, तो उसका अखंड रूप से ग्रहण करना। अभी जो हमने सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह सीखी है, तो पहले तो वस्तु क्या है, कैसी है, उसके लक्षण क्या है, किस तरह से है, ये सारे हमको उसको तोड़ तोड़ कर देखा है, परंतु वस्तु में टुकड़े रूप से उसको नहीं ग्रहण कराया, उसको तो अखंड रूप से, अखंड रूप से यानी द्रव्य की अखंडता, पूरा मय द्रव्य एक, फिर क्षेत्र की अखंडता यानी असंख्यात प्रदेश ही पूरा एक, उसमें भी प्रदेशों के भेद नहीं करना, किसी भी अपेक्षा से भेद नहीं करना। फिर प्रवाह पर्याय में क्या लेना, पूरे अनादि अनंत, यानी वो उसमें नित्य में आ गया, नित्य में तो पूरा प्रवाह आ जाता है। ये परिणमनशीलता भी उसमें आती है, क्योंकि परिणमनशीलता नित्य है ना, वो सारे ही द्रव्य के अंग उसमें अंतर्भूत है, और भाव यानी अनंत गुणों के अखंड, उसमें भी ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये तो शुरू में समझाने के लिए बताए थे। अभी सारे भेद की लक्ष्य छोड़कर अभेद को पकड़ना है, तब समय दर्शन होगा। तो इसमें अभेद में समस्त पर्याय आई कि नहीं आई? हमने पूरे अपने अखंड द्रव्य की दृष्टि की, तो ये द्रव्य में उसकी सारी अनादि अनंत पर्यायों का उसको वो नित्य अंश में उसके आ गई कि नहीं आएगी? द्रव्य क्या है? गुण पर्यायों का पिंड है। तो उस द्रव्य में द्रव्य काहे से बनाए, चार बातें कौन सी उसमें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य तो द्रव्य है यार, तो उसका क्षेत्र ये असंख्या प्रदेश, ये इतना उसका क्षेत्र है। और काल में क्या लेना, द्रव्य का काल कितना है, अनादि अनंत। तो पूरे पर्याय आए कि एक भी छूटा उसमें, तो सभी आ गई। तो ये कौन से काल में कौन सी होगी, उसको उसका लक्ष्य छोड़ना है। उसका लक्ष्य करोगे तो पर्याय का लक्ष्य होगा, हमको तो द्रव्य का लक्ष्य करना है। तो द्रव्य का लक्ष्य करते हैं तो एक एक पर्याय का लक्ष्य छूट जाएगा, तभी द्रव्य का लक्ष्य होगा। तो अनादि अनंत सारे पर्याय हमने शामिल कर दी नित्य में, यानी वो सारा प्रवाह का द्रव्य, क्षेत्र, काल में सारी आ गई पर्याय। और भाव यानी अनंत गुणात्मक ऐसा जो पिंड हो, ये अनंत गुण या अनंत का भी लक्ष्य छोड़ दो। तो ये तो सारा पहले समझने के लिए हमने विस्तार से समझा, अभी उसमें नहीं उलझना। एक बार समझ लिया ना, जैसे भारत के इतने सारे प्रदेश है, देश, तो उसके ये राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सारा, अभी सारे का लक्ष्य छोड़ दो और एक भारत ऐसा करो। वैसे यहाँ अभी ये सारों का भेदों का लक्ष्य हटाकर भेद तो समझाने के लिए पूर्व अवस्था में होते हैं। अब वस्तु कैसी, आत्मा कैसा वो समझा, अभी उसका लक्ष्य करना है। तो इसलिए क्या कहा कि जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है, समस्त पर्यायों को एक 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 कैसा करके नहीं, वो तो सर्वज्ञ कहलाएगा। यहाँ सम्यक दृष्टि की बात है। इनका प्रश्न जो आपने पूछा कि समस्त पर्यायों को तो जानते ही नहीं है, परंतु द्रव्य में उसकी सारी, द्रव्य को जानते है, उसकी सारी पर्याय अंतर्भूत है, यानी प्रत्येक द्रव्य में अपनी अनादि अनंत पर्याय क्रमनियमित उसी समय में वैसी ही वे ही होगी। ऐसा जो निश्चय से यानी वो जैसा 100% ऐसी जिसकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा काहे के बल से करता है कि सर्वज्ञ के बल से करता है कि सर्वज्ञ का स्वरूप हमने जाना है और सर्वज्ञ ऐसा ही जान रहे हैं। तो जिसने सर्वज्ञ का निर्णय किया अपनी श्रद्धा में, ये सारा श्रद्धा में करना है, ज्ञान के द्वारा ही कर रहे हो। ज्ञान में तो ये तो युक्ति अवलंबन हो गया, ऐसा वही उसका स्वीकार भी होना है ना, इतना तो बलपूर्वक उसमें उसका स्वीकार हो जाएगा, तो उसकी दृष्टि अपने सर्वज्ञ स्वभाव पर आए बिना नहीं रहेगी। निर्णय तो सर्वज्ञ का कर रहा है, निर्णय तो क्रमबद्ध का कर रहा है, और ऐसे क्रमबद्ध का जब निर्णय तो विचारों में विकल्पों में करते करते जब सही निर्णय हो जाता है, उसी समय में वो अपने स्वभाव उपयोग अपने स्वभाव को पकड़ता है। वो क्या करना है, कैसा छोड़ना है, वो कुछ नहीं करना, वो सारा सहज है। वो भी क्रमनियमित होगा कि नहीं होगा, कि जीव की इच्छा से होगा। तो मैं अभी ऐसा बस बैठूंगा और समय दर्शन प्राप्त करूंगा, ऐसा इच्छा विच्छा से कुछ नहीं होता। ये तो सहज जब ये ऐसी वस्तु व्यवस्था का उसका सही निर्णय हो जाता है, तो उस समय वैसी अवस्था हो जाती कि वो ऐसा बैठा है, एकाग्र चिंतन में बैठा है, वो बाहर में बताने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि उसने ऐसा ऐसा विकल्प किया, उसने ऐसा चिंतन किया, पहले उसने शास्त्राभ्यास किया, चिंतन में बैठा, आत्मसन्मुख परिणाम हुए, विकल्प छूटकर उसने स्वभाव को पकड़ा, ये तो बताने के लिए सारा ऐसा समझा सकेंगे, परंतु जो होने वाला वो तो सहज होता है। उपदेश की भाषा में ऐसा होगा कि अरे शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो, जो शास्त्र स्वाध्याय में लगा है उसको कहेंगे अभी पढ़ेंगे कितने दिन, खाली पुस्तक का पंडित होगा क्या, अभी आत्मा की दृष्टि कब करोगे, ये तो उपदेश की भाषा होती है। परंतु जब हम सिद्धांत देखते हैं तो उसमें ऐसा ही है कि ये जो सारा है जो सुनिश्चित सहज हो जाता है, उसके पहले ऐसे ऐसे होते हैं, तो इसीलिए जो सामने जीव है पात्र उसको देखकर भी ऐसा भाव होता है कि अरे ऐसा करो अभी कहाँ तक रखड़ोगे। बात आती है नहीं कि अपनी अभी दृष्टि करो, अभी शास्त्र की दृष्टि कितने करेंगे। परंतु ये तो सारा उपदेश की भाषा अलग होती है और सिद्धांत अलग होते हैं। सिद्धांत क्या है, एक द्रव्य किसी दूसरे अन्य द्रव्य का नहीं करता, फिर भी हम करने धरने की भाषा में बोलते भी है, उपदेश भी देते हैं। स्कूल के बच्चे को भी कहेंगे कि जाओ स्कूल में बराबर जाना चाहिए, रोज बराबर सीखना चाहिए, अभी नहीं सीखेगा तो पढ़ेगा नहीं तो उसको तुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो उसमें ऐसा नहीं वो समझाना है कि तो तू पैसा कमा सकता है या तू ये पढ़ सकता है, ऐसी बातें नहीं कहना, वो उपदेश की भाषा है। वो अलग अलग अनुयोग की भी भाषा जैसे अलग होती है, वैसे ये उपदेश और सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत तो समझना है और उसको वैसे उसी रूप में हमें श्रद्धा में अंगीकार करना है। भाई बहुत फास्ट होता है बोलना। हाँ नहीं समझता तो और स्लोली जाएंगे, कभी कभी वो बहुत फास्ट फास्ट बोल लेती हूँ मैं। जिनागम में भी और भी अनेक स्थानों पर इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। ये जिनागम में कहाँ कहाँ ये क्रम नियमित संबंध में बातें आती उसको कहते हैं। प्रागेव यद अवाप्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते अवश्यम तेन तत्र तथा ततः। ये पद्म पुराण में बात आई, उसका अर्थ है जिसे जहाँ जिस कारण से जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है उसे वहाँ उसी कारण से उसी प्रकार वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। ये आपने संयोग वियोग की बात की, और उसमें ऐसे जिसकी जो वस्तु जब जहाँ उससे जानी छूट जानी वो वैसे जाएगी उसी प्रकार से जाएगी। अरे मैं यहाँ ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता, चोरी हुई, अरे मैं उसको बराबर संभालता तो नहीं चोरी होती। ये तो हम क्योंकि उसी विकल्पों में हम उलझे रहते हैं ना, हम ऐसा नहीं करते वैसा करते तो कितना अच्छा है, दिन भर हमारे कितने सोच विचार उसी बात पर चलते। उसने ऐसी गाली दी मुझे, मैं तब मैं क्यों चुप बैठा, मैं इस प्रकार से बोल सकता था। ये तो मन में चलते हैं ना हमारे भाव ऐसे क्यों। अब और भी अब बातें आती, भैया भगवती दास ने ये जो लिखा है छंद, हाँ इस प्रकार का भाव, यानी इस प्रकार का है कि जो द्रव्यों की समस्त पर्याय वगैरह वो समय दृष्टि है, प्रत्येक वस्तु क्रम नियमित है, हाँ वो भाव, यानी क्रमबद्ध पर्याय को समझाने वाला भाव, इस प्रकार का भाव इन्हें। ये जो अभी सम्यक दृष्टि की बात की ना, ये सारा ही ऊपर कब होता, यानी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का ये सारा उद्धरण था, यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ से लेकर, यानी ये 321 22 23 गाथा है, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक है। अब इसी प्रकार का भाव, यानी ये तो सारा हुआ, ये कार्तिकेय ने क्या बताया उसको कहा, अब इसी प्रकार का आशय, इसी प्रकार की बात अन्य भी शास्त्रों में आती है। पहली बात ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की बताई, अब दूसरी पद्म पुराण की बताई कि जो जब जैसे मिलना है वैसे मिलेगा। अब जो भगवान सॉरी भगवती दास, भैया भगवती दास नाम के जो कवि हो गए, उन्होंने जो लिखा है उसको बताते हैं कि जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरारे बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, ताहे होता अधीरा रे। यानी क्यों अधीर होता है, यानी क्यों इसे व्याकुल हो जाता है। समयो एक बढ़े नहीं घटती, एक भी समय बढ़ेगा नहीं और घटेगा नहीं। अब सुख भोग रहे हो या दुख भोग रहे हो, उसका एक समय भी आगे पीछे नहीं होगा। जितना समय सुख भोगना है उतने ही समय भोगेगा, अधिक नहीं भोगेगा। जितना समय दुख है उतना ही भोगेगा, वो भी अधिक नहीं रहेगा, उसके अपने समय में चला जाएगा। ये सारा सुनिश्चित है। तो समयो एक बढ़े नहीं घटती, जो सुख दुख की पीरा रे। ये सुख की भी पीरा, हाँ, ये जो जिसमें हर्ष मान रहा है वो भी पीड़ा है। हाँ, वो आता है ना स्वर्ग के क्लेश भोगने पड़ेगी, किसमें आई थी बात, पंचस्थिका में। हाँ हाँ, तू क्यों सोच कर रे मन कूड़ो हो ये वज्र जो हीरा रे। तू सोच सोच कर उसके बारे में वो क्यों अपना मन छोटा करता है, तो अपना मन को क्यों वज्र जो हीरा रे, हीरे के समान अपने को वज्र के समान ऐसा निश्चित कर लो। ये सुख दुख की तरफ देख देख कर उसके बारे में सोच सोच कर अपना मन क्यों छोटा करता है, अपना मन क्यों सुखी करता है। हाँ, कचरा, हाँ, मन में क्यों ये सारा कचरा है, हमने ना ये तो मन में तो सारी कचरा पट्टी चलती रहती है हमारी, बिना काम के विचार करते रहते दिन भर। पर्याय के ऊपर, यानी वो पर्याय होनी है वो होगी। हाँ, यानी उसको पलटाने के लिए लाने के लिए आकुलता मत करो। दुखी है ना, अभी कोई प्रसंग है, अभी दुखद घटनाएं बन रही, अरे ये भी अपने काल में जाने वाली, वो तो कायम रहने वाली नहीं। हर्ष का परिणाम उसमें क्या सोचता है, अरे ये मेरा अभी कोई ले तो नहीं जाएगा, अरे जितनी लक्ष्मी मेरी चली तो नहीं जाएगी। उसका काल आपके पास रहने का निश्चित है, जब देने वाली है उसी समय में जाएगी, कितना भी उसको रोकेगा तो नहीं रहेगी। वो द्वीपायन वगैरह की बातें आएगी, आगे कथा में आएगी, तब ले लेंगे उसको। तथा इन्हें और भी उसमें लिखा है कि जा करी जैसे, अभी जा करी यानी निमित्त की बात आई, जैसे यानी पुरुषार्थ आया, जा ही समय में काल लब्धि आई, जो हो तव यानी वो होनहार यानी भवितव्य भवितव्यता, और जा द्वार यानी जिस विधि से, यानी उसके पहले वाले भी सारे सुनिश्चित उसके पर्यायों का क्रम होगा। सो बनी है वैसे ही बनती है, तरी है कछु नाही, कुछ भी टल नहीं सकता, कर ली नो निराधार, ऐसा निर्धार कर ले, निश्चय कर ले, डंके की चोट मन में बिठा ले, ऐसे कहते हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। तो ये क्यों भय नहीं कि हमने सारी व्यवस्था सुव्यवस्था कर ली, कि कोई चोर नहीं आए, चौकीदार बिठाए, ताले लगाए, टीवी लगाया, इसलिए भय चला गया। तो यानी सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे निर्भय नहीं होया जाता, तो कैसे होंगे। तो जा करी जैसे, जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है तरी है कछु नाही, करी ली नौ निरधार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ये समय दृष्टि को भय क्यों नहीं होता है, ये है क्योंकि उसने निर्धार कर लिया है, वो सारे ही भय उसके तल गए हैं समय दृष्टि के। समय दृष्टि ऐसा के ऐसा विचार हो है कि जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जाना है तैसा निरंतर परिणमे है, सो हो है। इष्ट इष्ट मान दुखी सुखी होना निष्फल है, यानी हम ही उसमें इष्ट या अनिष्ट मान मान कर सुखी या दुखी होते हैं। ऐसे विचारते ही दुख मिटे है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, ऐसे पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, यानी अपना दुख मिटा हुआ हमारे अपने ख्याल में आता है, इसलिए कहा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। यानी लिखा है ना उसमें, गुरु परंपरा से जानता है, आगम से जानता है, युक्ति से जानता है, और सबसे बलवान है तो क्या, अपने अनुभव से जानता है। तो जो सम्यक दर्शन होता है तो ये सारी बातें, ये जो जिसमें हम पहले सुख दुख मानते थे वो तो सारी चली जाती है, तो अपने अनुभव से भी वहाँ दुख मिटता हुआ प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। मेरे दुख पहले होता था इन चीजों में, पर चीजों में, अभी इन चीजों में कुछ उसमें सुख दुख लगता ही नहीं है, ये अपने अनुभव से भी सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ तक तो हमने देखा, अभी कल आगे पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन हो सदा देत हो रो।